अब आगे आती है सूरत नसर। ये वो आखिरी सूरत है जो नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी नुजूल के एतबार से आखिरी 114 सूरत। यानी आप ये देख लें कि 114 सूरतें कुरान में, तो ये 114 सूरत है। आखिरी आयत तो सूरत बकरा की आयत है, लेकिन आखिरी सूरत ये है, यानी पूरी मुकम्मल सूरत जो है वो ये नाजिल हुई। इस सूरत के अंदर, इस में नसर का लफ्ज़ चूंकि है, इसलिए इसका नाम भी सूरत नसर। और फिर दूसरा सूरतुल फतह, क्योंकि इसकी दूसरी, इसकी पहली आयत में सूरतुल फतह का भी, अल-फतह का भी लफ्ज़ है। और एक सूरतुल फतह वैसे भी हमने कुरान में दूसरी सूरत भी एक पढ़ी थी ना, लेकिन वो सुलह हुदैबिया के बारे में थी और ये फतह मक्का के बारे में है। इस तरह बुखारी में इसका नाम इजाज़ है अनसरुल्लाह वल फतह भी है, और इसको सूरत तौदिया भी कहा गया क्योंकि इसमें विदाई की बात है, इसमें एक मैसेज है विदा होने का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब वफात हो जाएगी। तो ये मदनी सूरत है जाहिर है, क्योंकि आखिरी सूरत है कुरान करीम की नज़ूल के एतबार से। एक राय यह कि फतह मक्का के बाद उतरी ये सूरत, दूसरी एक राय यह है कि हज्जतुल विदा पे उतरी है ये सूरत। और इस सूरत का थीम क्या है कि मोमिनो तुम शुक्र अदा करो उस नेमत का जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है। वो खास इनाम है अल्लाह ताला का कि मक्का को फतह कर दिया अल्लाह ताला ने, और फिर इतने लोग मुसलमान होने शुरू हो गए इसके बाद, तो ये एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी का मौका है। और तुम्हें फिर क्या करना चाहिए जब तुम्हें ये शुक्रगुजारी का मौका मिला है, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर हुआ है, तो फिर तुम क्या करो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई फिर इसके ऊपर अमल किया था कि फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुतों को तोड़ दिया था तो नमाज पढ़ी थी 8 रकात, जिसको बाज़ उलमा कहते हैं वो सलातुल दुहा थी, बाज़ कहते हैं सलातुल फतह थी, कि फतह के मिलने के बाद शुक्र बजा लाए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक तो इसके अंदर ये मैसेज है कि आपको ये फतह मिली है तो अब आपने क्या करना है, और आपको इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, और दूसरा इनडायरेक्ट मैसेज क्या है इसके अंदर जिसको कम ही सहाबा समझ सके थे, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर, कि अब आपका काम ख़त्म हो गया, मुकम्मल होने के लिए जा रहा है, तो अब आप क्या करें? अल्लाह अकबर। तो पिछली सूरत में देखें, आपने देखा काफरों से खिताब करने को कहा गया, और अब वहां पे देखिए दो रास्ते बताए गए ना, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लेकिन इसमें से कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता सही है? एक उनका दीन, एक हमारा दीन है, कौन सा सही है, कौन हक पे है? ये अब पता चल जाएगा जिसके साथ अल्लाह की मदद है, वो यहाँ पे आ जाएगा क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इदा जाअ नसरुल्लाह, जब आ गई नसर मदद अल्लाह की, वल फतह और फतह आ गई। इज़ा का जब लफ्ज़ आता है तो मैंने आपको बताया था इसमें ताकीद होती है, यानी जो बात आगे आ रही है इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल हक बात है, सच बात है। जैसे आप कहते हैं ना, जब मेरा बच्चा स्कूल से आएगा तो मैं ये करूँगी, तो जब का मतलब क्या कि अब ये जब जो लफ्ज़ है ना, ये बता रहा है कि वो आएगा ही आएगा, ये नहीं है कि अगर वो आएगा, अगर में कोई शक हो सकता है, लेकिन जब में नहीं। तो इसीलिए इन जो है वो अगर के लिए वो शक वाला हो सकता है, वो इसका उलट है। तो जा उस वक्त आता है अता के मुकाबले, एक अता भी है आना और एक जा भी है आना, दोनों में फर्क यह है कि अता में किसी चीज का आना होता है बगैर मेहनत और कोशिश के ज्यादा, और जा में को बहुत बड़ा इवेंट, को बहुत बड़ी चीज, को बड़ी बात होती है, जैसे कयामत के आने के लिए फैज़ा जाअत सौखा, फैज़ा जाअत तौमतुल कुबरा, और अता जब होता है तो हल्की चीज़ होती है, जैसे हल अता का हदीसुल गाशिया, खबर जो गाशिया की है उसके बारे में, और कयामत तो बहुत भारी चीज़ है, इसलिए जाआ ही आया। तो जब फतह मक्का की बात हुई तो तब भी देखें, और अल्लाह की मदद की बात हुई, तो ये बहुत बड़ा वाकया है। फतह मक्का यानी और फिर मक्का का फतह होना बगैर किसी जंगो जतल के, बगैर किसी खून खराबे के, ये कितनी बड़ी बात थी। और जितनी भी मुसलमानों ने जंगें लड़ी उनमें सबसे ज्यादा अहम यही थी, इसलिए कि ये कंक्लूजन थी ना। अरब भी सारा देख रहा था कि देखते हैं कौन है जिसके कब्जे में काबा की मुतवल्लियत होती है और जो मक्का का हाकिम बनता है वो ही हक पे होगा, क्योंकि सब जानते थे कि अल्लाह का घर है। तो उसके बाद ही इसीलिए लोग फिर दीन में दाखिल होते गए, सबको समझ आ गई। वो पहले देख रहे थे ऊंट किस करवट बैठता है, हम देखें तो सही कौन है इसका हाकिम बनता है, कौन है जो गलबा पाता है। तो जब मुसलमान इस पे यानी चढ़ाई की मक्का पे और फाते हो गए तो ये बहुत बड़ी बात थी, जबकि अब्रहा का लश्कर अल्लाह ताला ने उनको कैसे तबाहो बर्बाद कर दिया। तो अगर ये अल्लाह के नाउज़ु बिल्ला अल्लाह ताला के मुखालिफ होते, कोई दुश्मन होते, कोई गलत लोग होते, तो अल्लाह ताला इनका भी सफाया कर देता। तो ये एक बहुत बड़ी दलील थी इस बात की कि अल्लाह इनके साथ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब ईजा जब जा आ गई नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, अल्लाह की सपोर्ट, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा दे दिया। और देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने रोब दिया था, एक माह की मसाफत तक दुश्मन के दिल में आपका रोब हो जाता था, और अल-फतह इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने फतह दी। अल्लाह की मदद का आना किसी के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, ये मदद खास है, क्योंकि नसरुल्लाह जिसके साथ अल्लाह की मदद हो जाए वो फिर कभी भी शिकस्त नहीं खा सकता। अल्लाह ताला ने दूसरे मौके पे भी मुसलमानों की मदद फरमाई, और वलकद नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कथीरतें व यौम हुनैन, अल्लाह ताला ने बहुत जगह पे मुसलमानों की मदद फरमाई, अगर यहाँ पे खास तौर पे इस मदद का जिक्र है जो फतह मक्का के वक्त थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हुआ, क्योंकि मिशन यही था कि काबा को बुतों से पाक किया जाए, तौहीद का गढ़ बनाया जाए दोबारा इसको, और ये मिशन मुकम्मल हो गया। और इसमें अल-फतह के लफ्ज में फतह मक्का के बाद भी जितनी फतूहात आने वाली हैं उनकी तरफ भी इशारा मिल जाता है कि फारिस भी फतह होना था, उसके बाद इराक फतह हुआ, फलस्तीन फतह हुआ, मिस्र तक मुसलमान पहुंच गए, स्पेन का इलाका, जितनी भी फतूहात। लेकिन आप ये देखें कि इस फतह में कितना अरसा लगा, क्या अगले दिन ही हो गई? नहीं, बहुत टाइम लगा ना यहां तक पहुंचने में। और आज भी मुसलमानों को यह समझना होता है कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू। अब तो मुझे तर्जमा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम माशाल्लाह पढ़ चुके हैं ये सब कुछ, कि तुमने क्या समझ रखा कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर तो वो चीजें आई ही नहीं जो पिछले लोगों पे आई थी, उनके ऊपर क्या क्या है? अलबसा और दर्रा व जुलजिलू, क्या है बसा? बसा का मतलब है जंगे, जंगे उन पे मुसल्लत हुई, और दर्रा भूख इफलास, और मुसलमानों के ऊपर उस जमाने में भी हुआ कि देखें कितनी उनको जंगे लड़नी पड़ी, और उसके बाद भूख का आलम तो ये था कि पत्थर पेट पे बांधे होते थे, व जुलजिलू, और ईमान का इम्तिहान भी जलजले में, सिर्फ जमीन का जलजला नहीं है, ईमान को झिंझोड़ के उनको रख दिया गया, पता चले कि किसका ईमान मजबूत है। और जंगे अहज़ाब में ये हुआ था कि जब मुनाफिक तो फिर भाग गए थे कि देखो अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे झूठे वादे किए हुए थे, और ये क्या था, तो ईमान उनका परखा गया ना, तो अल्लाह ताला झंझोड़ता है। आज भी मुसलमानों को ये बात समझनी है कि ऐसे ही नहीं फतह मिल जाती। और वो कहने लगे जो नबी और उनके साथी, मता नसरुल्लाह अला इन नसरुल्लाह करीब, उस वक्त वो बोले कि कब आएगी अल्लाह की मदद, तो कहो अल्लाह की मदद करीब ही है। तो नसरुल्लाह ऐसे नहीं आ जाती, इस आयत से क्या पता चला कि वो कहते थे कब आएगी अल्लाह की मदद, जब झंझोड़ दिए गए उनके ऊपर, भूख भी और इफलास और जंगें और उनके ईमानों के इम्तिहान हो गए, उन्होंने कहा कब आएगी अल्लाह की मदद, तो अल्लाह की मदद करीब ही है। तो नसरुल्लाह अगर हम आज भी चाहते हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, तो समझे मुसलमान कि इससे पहले लड़ना भी पड़ेगा, जंगें भी मुसल्लत होंगी, भूख होगी, कहत होगा और हिला दिए जाएंगे। और वाकई आज जहां पे जंगें हो रही हैं सिर्फ मुसलमानों के इलाके, अगर भूख है तो वो कहाँ है, फलस्तीन में है, यमन में है, शाम में है, रोहिंग्या में, कितनी भूख है, भूख से लोग मर रहे हैं। मगर याद रखे सारी उम्मत कभी कहत साली से खत्म नहीं होगी, ये अल्लाह ताला का वादा है अपने नबी के साथ, पूरी उम्मत नहीं कभी खत्म होगी। और जुलजिलो तो आज बहुत शिद्दत से महसूस होता है कि किस तरह झंझोड़ दिया गया ईमानों को, कुछ हैं वो पक्के हो गए और कुछ ने कहा फिर अल्लाह कहाँ है अगर इनके साथ ऐसे हो रहा है, कुछ ने बुरा गुमान करना शुरू कर दिया, तो मुनाफिक और मोमिन अलग अलग हो जाएंगे। और जब ये हो तो फिर याद रखो अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद फिर करीब ही है, जब ये तीनों चीजें हो जाएं। अल्लाह अकबर। वरअईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और वरअईता, और तुम देखोगे लोगों को, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं दीन में, अफवाजा फौज दर फौज। और वाकई जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पे चढ़ाई की थी तो 10,000 का लश्कर था, लेकिन उसके बाद आपने सीरत में पढ़ा है कि फौरन ही, अभी मदीना वापस भी नहीं गए थे, फौरन हुनैन की तरफ जाना पड़ा। उस वक्त कितना लश्कर था, 30,000 का लश्कर था, और फिर 30,000 का लश्कर उस वक्त, और फिर उसके बाद अंदाजा कीजिए कि अगला ही साल आमुल वफूद जो 9 हिजरी था, अः 9 हिजरी का साल जिसको आमुल वफूद कहते हैं, वो साल था जिसमें इतने वफद आए आपके पास इस्लाम लाने के लिए, इतनी कसीर तादाद में कि उस साल का नाम ही आमुल वफूद पड़ गया। ऐसे आमुल फील है, इसी तरह आमुल वफूद भी है, वफदों का साल। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में गए हैं तो कितने मुसलमान थे आपके साथ, 1,25,000। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि लोग वाकई यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा थे, आप देखोगे लोगों को कैसे फौज दर फौज इस दीन में दाखिल होते जा रहे थे। और ये लेकिन एक दिन का काम नहीं था, ये किसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत थी, मगर मक्का फतह होने के बाद बस इस तरह था कि समझ लें जुलूस के जुलूस आ रहे हैं, वफद के वफद आ रहे हैं, कबीले के कबीले आ रहे हैं। इससे पहले लोग आते थे लेकिन छुपते छुपाते आते थे, अकेला अकेला कोई आ गया, कोई एक कबीले का कोई आ गया, उसने जाके अपने कबीले में बताया, अब तो पूरे कबीले आते थे और दाखिल हो रहे हैं। यदखुलूना, दाखिल होना जो होता है ना, वो किसी सलामती की जगह पे इंसान दाखिल होता है, तो जैसे उदखुलू फिस सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो दाखिल होने में सेफ्टी सिक्योरिटी इस तरह की चीज़ें होती, तो लोग दीन अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे थे। और आप वरअईता, तुमने देखा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिखाया इसी जिंदगी में, आप देख लेंगे कि ऐसे हुआ और ये हो गया। और इंसान के लिए और भी ज्यादा शुक्र की चीज ये होती है कि वो अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से कोई नेमत देख ले। जैसे एक होता है मिसाल के तौर पे, किसी के बच्चे हैं वो इस वक्त बिगड़े हुए हैं लेकिन वो दुनिया से चला जाता है तो वो इतने नेक हो जाते हैं, लेकिन जो उसको वो तस्कीन मिलती ना अगर वो अपनी आंखों से देख लेता, वो उससे बढ़ के थी जो कि वो उसके बाद नेक बने। तो नेमत का को अल्लाह ताला अगर दिखा दे तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का करम होता है। अब आप क्या करें, ये इतनी बड़ी अल्लाह ताला की मदद भी आ गई, अल्लाह ताला ने फतह भी दे दी, तो आप क्या करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर। अब आप अल्लाह ताला की तस्बीह करें उसकी हम्द के साथ, अपने रब की, और इस्तिग़फ़ार करें। ये सूरत जब नाजिल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया मुझे मेरे इंतकाल की खबर मिल गई है, तो वो रोने लगी फिर हंसने लगी, जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया, आपकी वफात की खबर ने मुझे रुला दिया, लेकिन रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया, बेटी सब्र करो, मेरे अहल में से सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। तो मुझे इतनी उनको खुशी हुई कि हंसी आ गई उन, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने एक खुशखबरी भी दी, लेकिन साथ अब आपके बुलावे की भी बात आ गई कि आपको अब जाना है, क्योंकि आपका काम अब मुकम्मल हो गया, अब मिशन जिस पे आपको भेजा गया था। बा साहबा ने हजरत उमर फारूक के सामने इस सूरत का ये मतलब बयान किया कि जब हम पर अल्लाह ताला शहर और किले फतह कर दे और हमारी मदद फरमाए, तो हमें हुक्म मिल रहा है कि हम उसकी तारीफें बयान करें, उसका शुक्र करें, उसकी पाकीज भी बयान करें, नमाज अदा करें, गुनाहों की बख्शी तलब करें। तो ये सही है, लेकिन ये एक हिडन माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब जाने का वक्त आ गया। अल्लाहु अकबर। और आपको अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत का फल दिखा दिया है, ये फौजी की फौजें आपके झंडे तले आ गई, जौक दर जौक लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो अब आप वापस आ जाएं, अब आप अल्लाह ताला से मुलाकात की तैयारी में लग जाएं। जो काम अल्लाह ताला ने आपसे लेना था वो पूरा हो चुका है, अब चलने का सामान बांध लें। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन अल्लाह की तस्बीह बयान करता होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन इस्तिग़फ़ार करता हो, लेकिन फिर भी बुखारी की हदीस में आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में सजदे में बकसरत सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फिर ली पढ़ना शुरू हो गए। इसके बाद इतना ज्यादा पढ़ते थे, हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम आपको देखते थे कि आप एक एक मजलिस में 100 दफा से भी ज्यादा इस्तिग़फ़ार कर लिया करते थे। तो क्यों? इसलिए क्योंकि देखें, पहले भी करते थे लेकिन अब और ज्यादा बढ़ा दिया कि अपने रुकू सजदों में भी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है ना, रुकू सजदे में भी और इस्तिग़फ़ार भी ज्यादा कर दी और तस्बीह की तादाद भी ज्यादा कर दी, और सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फिर ली के अंदर देखें सुभाना का में तस्बीह हो गई, वह भी हमदी फसबे भी हमदी यहाँ पे कहा गया ना, वह भी हमदी का में हमद हो गई, और वस्तगफिर हो अल्लाहुम्मा अग़फिर ली में मग़फिरत मांगना हो गया। तो तस्बीह, तहमीद और इस्तिग़फ़ार तीनों चीजें इसमें आ गई। तो 100 दफा से ज्यादा हजरत अनस फरमाते कि हम गिन लेते थे एक मजलिस में, तो मजलिसों में भी आप यही कर रहे हैं, नमाज में भी ऐसे कर रहे हैं, घर में भी ऐसे कर रहे हैं। अने आप जाने का जब वक्त हो रहा है तो देखो फिर आपका अमल कैसा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया कि इस तरह से आप भी करो अपने जाने की तैयारी। तो जिनको करनी हो अपनी तैयारी, वो फिर अल्लाह ताला की हम्द और उसकी तस्बीह और इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दें। और आपने सिखा दिया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी जो 100 दफा पढ़ेगा उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो फिर ये कितना पढ़ना चाहिए? और आपको इस्तिग़फ़ार का क्यों कहा गया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कोई भी गुनाह नहीं थे? तो उलमा कहते इस्तिग़फ़ार 2 तरह की होती, एक तो वो होती जो गुनाहगारों की होती, जैसे हमारे जैसे लोग गुनाह करते हैं तो वो इस्तिग़फ़ार कर, एक फरमाबरदारों की नेकों की भी इस्तिग़फ़ार होती है। वो क्यों इस्तिग़फ़ार करते हैं? इसलिए कि कोई इस कायनात में ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा कर सके, कोई नबी तक, कोई फरिश्ता तक नहीं कर सकता, इवन वो फरिश्ते जिनको अल्लाह ताला ने जब से पैदा किया और वो उस वक़्त से सजदे में पड़े हुए और वो सजदे से सर उठाएंगे कयामत के दिन, और वो यही कहेंगे अल्लाह तेरी इबादत का हक नहीं हम अदा कर सके। तो अगर वो नहीं कर सके जो ना कभी खाते हैं ना पीते हैं ना सोते हैं ना कोई और मशगला है उनका, कोई और मसरूफियत नहीं, कोई और माश नहीं, कोई और काम नहीं, कोई आराम नहीं उनका, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हर टाइम उनका सर सजदे में और वो उसी में तस्बीहां करते जा रहे हैं, और फिर भी वो कहते हैं अल्लाह तेरा हक नहीं अदा हुआ, तो बाकी तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह तेरा हक नहीं अदा कर सकते, अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे इस पे, ये आज ही की इंतहा है, अल्लाह हमें माफ़ कर दे क्योंकि हम तेरा हक नहीं अदा। ये नेकों की तौबा है, हमें तो तौबा करने का कोई कह भी दे तो हम कहते हैं लो हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया। तो देखिए अल्लाह ताला अपने नबी को फरमा रहा है वस्तग़फ़िर, उससे मगफिरत मांगो, उससे बख्शिश मांगो, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो। और सबसे पहले तो तस्बीह, तस्बीह का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, तस्बीह सब्बाहा से है, वो अल्लाह ताला को पाक करार देना हर उस चीज से जो उसकी शान के लायक नहीं है। हमारी शान के लायक है कि हमारी औलाद हो, लेकिन अल्लाह ताला की शान के लायक ये नहीं है, इसलिए उसको इससे पाक करार देना। बुढ़ापा है वो, या चले बुढ़ापा हम भी अपनी शान का नहीं समझते, आराम करना है, आराम करना ये तो हमारे लिए तो जेब देता है लेकिन अल्लाह की शान के लायक नहीं। बुढ़ापा है अल्लाह की शान के लायक नहीं, कमजोरी अल्लाह की शान के लायक नहीं, लैसा कमिस्ली शही, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। तो उसको पाक करार देना हर ऐब से, हर किस्म की कमजोरी से, हर किस्म के कमी से, हर किस्म के नुकसान से, हर किस्म की ऐसी चीज से कह दें कि जो उसकी शान के लायक नहीं है। और ये पाक करना भी दो तरह को होता है, एक तो उसकी जात को पाक करार देना, ठीक है, और दूसरा उसकी अस्माओ सिफात को पाक करार देना। जैसे आता है ना सब्बे हिस्मा रब्बी का, अल्लाह के नाम की तस्बीह करो, अपने रब के नाम की, के उसके नामों को पाक करार देना हर एक कमी से। यानी आप अल्लाह ताला अगर अर रहमान है तो हम कहें कि हम में भी तो रहम है, हम भी तो रहम करते हैं, तो हाँ आप रहम करते हैं लेकिन आपका रहम करना और अल्लाह ताला के रहम करने में बहुत फर्क है, क्या ना, आपका लिमिटेड है, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा है। आपका किसी एक के लिए होगा, दो के लिए होगा, 10 के लिए होगा, और आप एक दफा माफ करते हैं उसके बाद कहते हैं अब नहीं मैं मेरे से माफ होता, अब नहीं मैं इसके ऊपर रहम कर सकता, अल्लाह ताला का ऐसा नहीं है। तो उसकी सिफात कामिल हैं, परफेक्ट हैं, और किसी से लीव ही नहीं है, और उन्होंने ख़त्म नहीं होना, जैसे उसकी ज़ात कामिल है और उसकी ज़ात हमेशा है और हमेशा से और हमेशा रहेगी, तो इसी तरह उसकी सिफात भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो उस तस्बीह करना यहाँ पे है रब्बी का, अपने रब की, अल्लाह की जात को पाक करार देना और उसकी हम्द करना। तो तस्बीह जो है ना एक यूनिवर्सल इबादत है, पूरी कायनात तस्बीह करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वह इम मिन शेई इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कोई चीज ऐसी है ही नहीं है मगर वो अल्लाह की तस्बीह करती है उसकी हम्द के साथ। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, तो आप पढ़ ही चुके हैं ना, अल्लाह की तस्बीह करता है जो आसमानों में जो जमीन में। तो तस्बीह एक बहुत बड़ी इबादत है, इसका बड़ा अजर है। बाद में यहाँ पे तस्बीह का माना सलात भी लिया, तो सलात भी कह सकते हैं, नमाज भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे भी तस्बीह, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो कलमे ऐसे जो जुबान में बड़े हल्के हैं, मीज़ान में बड़े भारी हैं, और महबूब को बहुत, रहमान को बहुत महबूब है, तो वो कौन से हैं, सुबहान अल्लाह व बिहमदी सुबहान अल्लाह अज़ीम। अब बंदा सोचता है ये तो बहुत ही हल्की बात है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, तो इंसान उस पर इतनी तवज्जो नहीं देता, हालांकि ये कितने भारी कलमात हैं, कितने भारी हैं मीज़ान में, और अल्लाह ताला को कितने महबूब हैं, कितनी आसानी से इंसान इनको पढ़ सकता है, लेकिन तवज्जो नहीं देता। तो तस्बीह उसकी हम्द के साथ करते रहना, और देखें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी थी दुनिया से जाने की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र में इन्हीं कलिमात का विर्द करते रहते थे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैही, और इसी तरह मैंने आपको बताया सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का। आप देखें ये जो आप दुआ इस्तफ्ताह पढ़ते हैं शुरू में अपनी नमाज की, सना जो पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का व तबारक इस्मु का, ऐसे ये पढ़ते हैं ना, तो उसमें से पहले तीन वर्ड्स ले लें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का, आसान तरीका याद रखने का, और अल्लाहुम्मा अग़फिरली, बस। तो कितना आसान है। हज़रत उम्मे सलमा से मरवी है कि आपसे सलम अपनी आखिरी उम्र में उठते बैठते चलते फिरते सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ा करते थे। तो मैंने पूछा कि आप क्यों पढ़ते हैं, तो आपने इस सूरत की तिलावत फरमाई कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं ये पढ़ूं, और सजदे में भी ये पढ़ सकते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बाना व बिहम्दी का अल्लाहुम्मा अग़फिरली, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में पढ़ने लगे और अपने रुकू में पढ़ने लगे। तो हमें इससे सबक मिलता है कि हमने अपनी तैयारी के लिए क्या पढ़ा करना है। इन्नहु क्याना तव्वाबा, और अल्लाह ताला बेशक बेशक वो है तव्वाबा, तौबा को कबूल करने वाला, वो अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। यहाँ पे गफ्फारा नहीं आया, तव्वाबा आया है। तव्वाब का मतलब है, ये अल्लाह ताला का वो नाम है जिसमें बहुत ही रहम है, क्योंकि बख्शिश भी है इसमें कि अल्लाह ताला तौबा को भी कबूल करता है और पलटता भी है, पलटता है इंसान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, उसकी हाजात पूरी करने के लिए उसके तरफ मुतवज्जे हो जाता है। जो अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो गया था उसके गुनाहों की वजह से, अल्लाह ताला वापस उसके तरफ अपनी रहमत के साथ मुतवज्जे हो जाता है। और ये तौफीक मिल जाना तौबा करने की, ये भी अल्लाह ताला ही तौफीक देता है। और फिर वो ही है जो उसकी तौबा को भी कबूल करता है। जिसको तौबा करने की तौफीक मिल जाए ना, समझ ले अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ही लेनी है, तो फिर ही इसको तौफीक दी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम तौबा करें। जब उसने इरादा कर लेता है ना कि मैंने इसको माफ करना है, तो फिर बंदे से कहलवा भी देता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। जैसे आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी ना कि तौबा कर लें, और फिर अल्फाज भी सिखा दिए, फिर कबूल भी कर ली। तो जब भी इंसान को नेमत मिले, जैसे यहाँ पे अल्लाह की मदद भी आ गई और फतह भी मिल गई, तो जब भी इंसान को नेमत मिले तो उसको क्या करना चाहिए? फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। अब हम भी सोचते हैं, अच्छा अब नेमत मिलने पे या कोई अच्छा काम होने पे किस बात की इस्तिग़फ़ार? तो ये भी तो देखें कि आप नमाज के बाद भी आपको कहा गया कि आप सलाम फेरते ही एक दफा बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर, 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह कहते। क्यों ये सुन्नत क्यों है? अल्लाह तेरा हक नहीं अदा हुआ, अल्लाह हमने वैसी नमाज नहीं पढ़ सके, इसमें तो बहुत गलतियां, बहुत कोताही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, उसकी तारीफ बयान करें। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे फरमाया था, अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दीजिएगा कि जन्नत की जमीन बंजर है, उसके अंदर अगर पौधे उगाने तो क्या करें? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो और फिर ये भी इसमें हमें मैसेज मिलता है कि जब आपका कोई काम मुकम्मल हो जाए ना, जब काम मुकम्मल हो जाए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे यह कुरान करीम का हमने एक पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, वो मुकम्मल होने वाला है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तस्बीह और हम्द। हम्द भी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह भी हम्द है, और सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका में भी हम्द है, तो हमें भी यही करना चाहिए। और जब हमें जिंदगी के कई बहारें देख लिया, पता है कि आगे अब जाने का ही वक्त है, तब भी यही करना चाहिए। और जब कामयाबी मिल जाए तो उसको ऊपर खुद ना फूले नहीं समा रहे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, नहीं, उस वक्त भी हम्द किसकी होगी? रब्बी का, तेरे रब की, तब भी तारीफ रब की होगी। यानी कि हमने इतनी जान मारी, हमने तो इतनी साल मेहनत की, हमने तो ऐसे किया, नहीं, तब भी तारीफ अल्लाह तेरी है, क्योंकि तेरी तौफीक दिए बगैर हमसे ये तो नहीं हो सकता था। तो बहुत सारे हमें लेसन्स मिलते हैं इससे। तिलावत सुनिए इस सूरत की।
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
एक और वाक्य आता है, जैसे यहाँ पे फौजों की बात हुई दाखिल होने की दीन के अंदर, तो हजरत मुसनद अहमद की रिवायत है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ोसी जब अपने किसी सफर से वापस आए, तो जाबिर इनसे मुलाकात करने के लिए गए, तो उन्होंने लोगों के अंदर फूट का और उनके अंदर इख्तलाफात का हाल बयान किया, और जो उन्होंने नई नई बिदतें ईजाद कर ली थी उनका जिक्र किया, तो सहाबी रसूल की आंखों से आंसू निकल आए, रोने लगे और फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों की फौजों की फौजें अल्लाह के दीन में दाखिल हुई, लेकिन अनकरीब जमातों की जमातें इनमें से निकलने भी लग जाएंगी। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।